आज हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में जापान। प्रथम विश्व युद्ध में जापान दो कारणों से प्रेरित होकर शामिल हुआ। 1902 ईस्वी में इंग्लैंड और जापान के बीच जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत जापान को इंग्लैंड के पक्ष का समर्थन करना था, क्योंकि इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर चुका था। अतः जापान भी अपने मित्र राज्यों की सहायता के लिए आ पहुंचा। दूसरा कारण है, जापान को अपने साम्राज्यवादी प्रसार के लिए यह अच्छा अवसर था और जापान इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहता था। ब्रिटेन के युद्ध प्रवेश से पूर्व जापानी जनता संघर्ष को केवल यूरोपीय मामला मानकर अमेरिका की तरह तथास्थता की नीति के पक्ष में थी, परंतु ब्रिटेन के युद्ध में कूदने पर जापानी समाचार पत्रों ने नया और उग्र रूप अपनाया। समाचार पत्रों में जापानी जनता को बार बार याद दिलाया गया कि कैसे 1895 ईस्वी में त्रिपक्षीय हस्तक्षेप में जर्मनी ने जापान विरोधी रुख को अपनाया था। जापानी जनता को यह याद दिलाया गया कि 1902 ईस्वी की मैत्री संधि के अंतर्गत जापान का ब्रिटेन के प्रति क्या दायित्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत महासागर में जर्मनी की नौ सैनिक शक्ति सभी तथस्थ देशों की जहाज रानी के लिए खतरा है, तथा क्याऊ चाऊ में जर्मनी की सैनिक तैयारियां सुदूर पूर्व की शांति के लिए भी खतरा हैं। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की थी और 7 अगस्त को उसने जापान से अनुरोध किया कि वह प्रशांत महासागर स्थित जर्मनी के नौसैनिक बेड़े को नष्ट कर दे। 8 अगस्त को जापान ने जर्मनी से एशियाई समुद्र में स्थित अपने बेड़े को आत्मसमर्पण करने की मांग की। इतना ही नहीं, उसने सांतुंग और क्याऊ चाऊ का पट्टा भी सौंप देने की मांग की। जापान की इन मांगों के पीछे यह उद्देश्य था कि वह पूर्वी एशिया से जर्मनी का प्रभाव समाप्त करके स्वयं अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा ले। 15 अगस्त को ब्रिटेन की सहमति प्राप्त करके जापान ने बजाबता अल्टीमेटम दे दिया। जर्मनी से मांग की गई कि वह चीनी और जापानी समुद्रों से अपने सशस्त्र जहाज को हटा ले और 15 सितंबर तक फिर से ध्यान देंगे। 15 सितंबर तक क्याऊ चाऊ का पट्टा बिना किसी शर्त और मुआवजे को जापान को सौंप दिया जाए, जिससे अंततः वह चीन को वापस लौटाया जा सके। जर्मनी ने अल्टीमेटम की उपेक्षा कर दी और 16 अगस्त को जापान युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध घोषणा के बाद जापान ने तत्परता से क्याऊ चाऊ और उसके बंदरगाह तिसिंगताओ की घेराबंदी शुरू कर दी। बंदरगाह की नौसैनिक और नाकेबंदी के बाद जापानी स्थल सेना चीनी सीमा में उतर गई और पीछे से तिसिंगताओ पर आक्रमण कर तिशिनान तक के रेल क्षेत्र पर अधिकार के लिए आगे बढ़ने लगी। चीन ने जापान की कार्रवाई के प्रति विरोध प्रकट किया, लेकिन जापान ने अपनी सैनिक कार्रवाई जारी रखी। 10 नवंबर 1914 ईस्वी को क्याऊ चाऊ पर जापानी नियंत्रण स्थापित हो गया। सैनिक आवश्यकता के नाम पर जापान ने पट्टेदारी की भूमि के बाहर रेल मार्ग की पहरेदारी का अधिकार भी चीन से ले लिया। तिसिंगताओ में चीनी सीमा शुल्क कार्यालय में जर्मन अधिकारियों के स्थान पर अब जापानी अधिकारी आ गए। वस्तुतः जर्मनी का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। जापान की नौसैनिक कार्रवाई। एक ओर जापान के स्थल सैनिक और जल सैनिक तिशिंग ताओ को तथा शांतुंग में जर्मनी के अन्य हितों को अपने अधिकार में लेने का कार्य कर रहे थे। दूसरी ओर जापानी नौसेना के दल प्रशांत और हिंद महासागर से ब्रिटेन के नौसैनिकों के साथ मिलकर जर्मनी के बेरे के विरुद्ध सक्रिय थे। इन अभियानों के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भूमध्य रेखा से दक्षिण स्थित जर्मन उपनिवेशों और द्वीपों पर अधिकार कर लिया और जापान ने भूमध्य रेखा के उत्तर स्थित जर्मन द्वीपों पर, इनमें मेरियाना, कैरोलिन और मार्शल द्वीप समूह शामिल थे। चीन के विरुद्ध जापानी कार्रवाई प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के कारण यूरोपीय राज्यों का ध्यान पूर्वी एशिया से हटकर यूरोप में केंद्रित हो गया। चीन में प्रवेश पाने के लिए जापान को यह बहुत ही सुनहरा अवसर मिला। कोई महान शक्ति उसका विरोध करने वाली नहीं थी, अतः उसने चीन पर अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करने की एक वृहत योजना बनाई और जनवरी 1919 ईस्वी में चीन के समक्ष मांगों की एक सूची पेश की। इस सूची में जापान के प्रमुख 21 मांगे थी। ये मांगे 5 वर्गों में विभाजित थी। पहले वर्ग में शांतुंग में जर्मनी के अधिकारों की समाप्ति थी। दूसरा वर्ग दक्षिण मंचूरिया तथा पूर्वी आंतरिक मंगोलिया में जापान की स्थिति के विषय से संबंधित था। तीसरा, यांग्त्सी घाटी के क्षेत्र में जापानी औद्योगिक पूंजी लगाने का कार्यक्रम था। चौथा, चीन के तटवर्ती प्रदेश को किसी अन्य देश को न सौंपने की व्यवस्था के संबंध में था। और पांचवा वर्ग विविध विषयों के संबंध में था, जिन्हें मांगे ना कहकर अनुरोध कहा गया था। जापान ने चीन को बाध्य किया कि वह इन शर्तों को स्वीकार कर ले। चीन के समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था, अतः उसने अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप चीन में जापान के प्रभावों में अपार वृद्धि हुई। यह था जापान का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना और उसकी इसमें भूमिका।